सदाशिव ने रोक कर कहा, लेकिन शेखर यह तर्क भी तुम्हारा खतरनाक है। नैतिक दृष्टि से यह हिंसा का सिद्धांत प्रतिपादित करना है। तुम्हारे कहने के अनुसार चले तो हमारा काम सिर्फ यथार्थ बुराई का नाश ही है, ध्वंस लीला ही है। वह बुराई पैदा ही ना हो, इसका प्रबंध तुम्हारी दृष्टि में खाम ख्याली है। नहीं, किसी हद तक तो तुम्हारी बात ठीक भी है। ध्वंस को मैं गलत नहीं मानता, ना उसे हिंसा ही करता हूँ। हिंसा वह है जहाँ प्रेरणा हिंसा की है, जहाँ अनिष्ट करने की चेष्टा है। इष्ट के लिए की हुई हत्या भी हिंसा नहीं है, बशर्ते किया वह इष्ट व्यक्ति का नहीं सृष्टि मात्र का हो। लेकिन यह गलत है कि इस प्रकार बुराई पैदा करने से रोकी जाने की गुंजाइश नहीं रहती। मैं यह कहता हूँ कि बुराई को रोकने की चेष्टा भी आप तभी कर सकते हैं जब आप जानते हो कि वह बुराई है क्या। यानी एक बार वह आपके सामने आ जाएगी, तभी आप उसे रोकने की चेष्टा कर सकेंगे। आपकी बचाव की कोशिश एक आदिम आक्रमण से शुरू होगी, क्योंकि बिना इसके आप बचाव कर सकेंगे। अज्ञात शून्य से बचने का आयोजन वैसा ही है जैसा छाया से लठेरती करना। हूँ, यह बात तो जचती है, लेकिन पहली बात फिर भी नहीं जची। इष्ट के मामले में तुम समझते हो व्यक्ति के लिए अपने को धोखे में रखना कुछ बहुत कठिन है। ऐसे भी लोग हैं जो समाज को शुद्ध रखने के नाम पर वेश्याओं के पास जाते हैं। जो आदमी वेश्याओं के पास नहीं जाते, वह शायद ऑब्जेक्टिव दृष्टि से देखकर कह सकता है कि वेश्याएं समाज शुद्धि का अप्रत्यक्ष साधन है। लेकिन जो आदमी अपने सब्जेक्टिव वासना का गुलाम कहा जाता है, उसे क्या हक है कि वह समाज को ऐसे ऑब्जेक्टिव दृष्टि से देखे। फिर भी लोग हैं जो इस बात पर अपने को विश्वास दिला देते हैं, और तुम्हारे हिसाब से वे लोग निर्दोष हैं। इष्ट और अनिष्ट, व्यक्तिगत इष्ट और विश्व हित में फैसला करने वाला कौन? सदाशिव धीरे धीरे बात करता जा रहा था और देख रहा था सूर्य अस्त की तरफ ही, मानो उसी से प्रश्न कर रहा हो। राघवन दांत देता हुआ बोला, हूँ, दैट इज दी कनेक्शन। शेखर जैसे कुछ सोचता हुआ सा कहने लगा, वैसे तो व्यक्ति के हित और विश्व के हित में भेद नहीं सो होना चाहिए। सदाशिव ने बैठकर कहा, या फिर वह गलती है। भेद तब नहीं है अगर ऑब्जेक्टिव व्यापक दृष्टि से देखे। लेकिन जब देखने वाला वह व्यक्ति है और सवाल उसके हित का है, तब वह इतना दूर दृष्टि से कैसे देखा जा सकता है? देवदास ने कहा, मैं देखता हूँ तुम लोग उस कहानी के रिफॉर्मरों से कम नहीं हो, या तुम लोगों का बहस मुबाहसा तुम्हारी आत्मसम्मान को भले ही बढ़ाए किसी काम का नहीं है। इसमें व्यक्ति का हित है, विश्व हित नहीं है। चाहे तुम किसी दृष्टि से देखो, विश्व हित काम करने में है। कार्यशीलता की 100 गलतियाँ निकम्पने की एक अच्छाई से बढ़कर है, क्योंकि कार्यशीलता में अपनी गलती को दूर करने की सामर्थ्य है, और निकम्मापन अपनी अच्छाई को कायम भी नहीं रख सकता। इसलिए अगर तुम्हें कुछ करना धरना है, तो कार्यक्रम नियत कर लो। इस सारी बहस का फायदा विश्व हित में उठाना चाहो, तो यह हो सकता है कि किसी भी कार्यक्रम को अंतिम और अकाट्य मत समझो। संशय मानव का अधिकार है, लेकिन अगर वह उदारता नहीं पैदा करता तो वह मानव का शाप है। शेखर हमेशा ही चिल्लाया करता है, अब जरूरत है इस पर अमल करने की। कार्यक्रम बनाओ और उसमें पहला कार्य लिख लो उदारता, ताकि वह बाकी सबको अनुप्राणित करती है। दी ओरेकल हैज स्पोकन। देवदास की बात से बहस का तल कुछ नीचे उतर आया, जहाँ वह काले तर्क के खारे पानी में, नहीं कार्य के मीठे रस में हाथ पैरा हिलाए। चारों सुधारक उठकर एक दूसरे के निकट आ गए। शेखर ने कहा, अच्छा बताओ, पहला काम क्या हम लोग करें? अंत में वे इस नतीजे पर पहुंचे कि मुख्य कार्य यही हो सकता है कि नौजवानों को जगाया जाए, उनमें एक गंभीरता पैदा की जाए और उनके जीवन को स्व उद्देश्य बनाया जाए। उन्होंने देखा कि जैसा आमूल परिवर्तन वे चाहते हैं वह इसी प्रकार हो सकेगा और आवश्यक हिंसा कार्य से भी वे बचेंगे। और शेखर के साहित्य प्रेम से, सदाशिव के कला प्रेम से, राघवन के विज्ञान और देवदास के इतिहास से यह भी तय हुआ कि जीवन में एक रास्ता आना उसके उद्देश्य को गहरा नहीं करता, उसके लिए घातक सिद्ध होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक ईंट पर खड़ी हुई की हुई दीवार पक्की नहीं हो सकती, उद्देश्य को दृढ़ करने के लिए, कार्य को अस्थायी बनाने के लिए जरूरी है कि जीवन कई जगह पर पृथ्वी में जड़ जमाए, वट वृक्ष की तरह हर एक दिशा में जाकर एक जीहा लटकाकर धरती से भोजन और बल खींचता रहे। उनके गंभीर होकर इन सब विषयों का अध्ययन करना आरंभ किया और दूसरों को भी प्रोत्साहित करने लगे। लेकिन शेखर के लिए यह ठीक-ठीक सुचारू रूप से चलने वाला कार्य बोझ हो गया। ना जाने क्यों उसका स्वभाव ही ऐसा था कि वह सिर्फ पर्याप्त काम लेकर ही सुखी नहीं हो सकता था। वह चाहता था कि इतना काम कि सिर उठाना मुश्किल हो जाए। संसार लेने में भी वह काम का कुछ हर्ज हो जाने का अंदेशा रहे, इतना कि उसके मन में आने वाले सोच, संदेह, तड़पा देने वाले असंभव स्वप्न, ये सब अवकाश की कमी के कारण मुरझाकर सूख जाए। अपने कुल 16 वर्षों के अनुभव से वह समझ रहा था कि उसकी यह गर्वीला अधीर यौवन का सामर्थ्य ज्ञान असल में अपनी ही पराजय की निशान था, क्योंकि वह मांग रहा था विश्वास। उसमें उठने वाले प्रश्न भी इसलिए थे कि कहीं पहुंचकर वे प्रश्न ना रहें, समाधान हो जाए। उसकी सारी गति उस कहीं पर पहुंचने के लिए थी। उसे लगा कि यह समिति का प्रोग्राम आरंभ में ही ऐसा हो चला है, मानो कहीं पहुंच गया है और वह सह नहीं सका कि उसके आगे तक पहुंचने का स्वप्न असंभव हो जाए। एक दिन वह अकेला ही घूमने निकला और सबसे पहले उधर चला जहां बोर्डिंग से करीब मील भर दूरी पर अछूतों का मोहल्ला था। वहां पहुंचकर उसने देखा मोहल्ले के सिरे पर एक हिंदू मेडिकल स्कूल की इमारत है जो पक्की है, बाकी सब मकान अध कच्चे या बिल्कुल कच्चे हैं और उनके पास तथा बीच में होता हुआ एक नाला बह रहा है। शाम हो रही थी, नाले का पानी पुराने तांबे सा होकर सुलग रहा था। दुर्गंध ना होती तो शायद उस समय कहना कठिन होता कि पानी गंदा है। उसके किनारे खड़े शेखर ने एकाएक देखा कि वह अकेला है, आसपास बच्चे नहीं दिखते हैं। उसे कुछ अचंबा सा लगा कि शाम के समय बच्चे बाहर ना खेल रहे हो। क्यों नहीं है वे बाहर, और खासकर इस अछूते मोहल्ले में जहाँ भीतर और चाहे कैसा हो बच्चों के लायक नहीं है। और सोचते सोचते जैसे उसके संचित बल के आगे फिर कोई दीवार टूटने लगी, मार्ग दिखने लगा। उसे बाइबल में से ईसा के दूत जान की बात याद आई। उस उन्मत्त आंखें, रूखे बिखरे बालों और कठोर शरीर वाले मृग चर्मधारी युवक ने ऐसे ही किसी स्थान पर खड़े होकर आह्वान किया होगा, आओ जीवन के पानी से तुम्हारा अभिषेक करूंगा। और ऐसी ही किसी लोहित मेली संध्या में मानवता के उच्च उच्छिष्ट छोटी जाति के लोगों ने उसकी सुनी अनसुनी कर दी होगी। कहा होगा कि पागल है, लेकिन उसका निरंतर चिल्लाना सुनकर बाहर निकले होंगे कि देखे या जीवन का पानी क्या है बला। शेखर को यह बिल्कुल ठीक लगा कि वह उसे ऐसी याद आए, क्योंकि जीवन का पानी क्या है? गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, इन सब का पानी तो धर्म और भक्ति में धूल धूल कर प्राण प्राणहीन हो गया है। जीवन चिरंतन जीवन कहीं है तो ऐसे ही गंदले नालों में जो समाज की नींव इन अछूतों के बीच में से होते हुए चिर उपेक्षित बहे जा रहे हैं। उन पतित पावनी कहलाने वाली नदियों का पानी तो ऐसा ही मरा हुआ है जैसा पंडितों का पांडित्य। तभी तो वह पानी चिताओं को सींचने में अस्थियों को बहाने में काम आता है। शेखर के सामने यह प्रकट हो गया कि वह सप्ताह भर के अंदर ही उस मोहल्ले के बीच में अछूत बच्चों के लिए एक स्कूल खोलेगा और वहाँ स्वयं पढ़ाएगा। कैसे प्रबंध होगा, किताबें कहाँ से आएगी, यह सब उसने नहीं सोचा। निश्चय करने करके उसने आगे घूमने की जरूरत नहीं समझी, सीधा हॉस्टल की ओर लौटा। राह में मेडिकल स्कूल की इमारत देखकर एकाएक उसने पुकारा दरबान। ठीक 5वें दिन मेडिकल स्कूल की इमारत में ही शेखर की रात्रि पाठशाला खुल गई। मिडिल स्कूल के हिंदू संरक्षकों ने उससे इमारत के 2 कमरों में अछूत क्लास बिठाने की अनुमति इस शर्त पर दे दी कि वह दरबान को 3 रुपये मासिक दिया करे। सवेरे उठकर उन कमरों को विशेष रूप से झाड़ बुहार कर और पानी छिड़क कर साफ कर देने के लिए, ताकि गंदे बालकों की छूत स्कूल के साधारण विद्यार्थियों को ना लग जाए। पुस्तकें 2 थीं, दोनों तस्वीरों के एल्बम, अध्यापकों 2 थे, शेखर और सदाशिव। अक्षर ज्ञान बोर्ड की सहायता से कराया जाता था। बाकी शिक्षा मौखिक थी या कई तरह के खेलों द्वारा होती थी। 7 विद्यार्थी थे। जिन लोगों की बुद्धि अशांत है, जिन्हें हमेशा नई समस्याओं से टक्कर लेने में मज़ा आता है, उनके सामने पहली समस्या हमेशा एक ही होती है, दुख दर्द की समस्या। संसार का पहला दर्शन सदा ही उसके पीड़ा भरे रूप का दर्शन होता है, और इसके बाद जो दूसरी समस्या होती है वह भी सदा एक ही होती है। पहली समस्या एक दूसरे से उसकी भूमिका तैयार करती है, और वह समस्या है नारी की समस्या। संसार का दूसरा दर्शन नारी की मूर्ति का दर्शन है, और शेखर की बुद्धि बहुत जल्दी उस दूसरी समस्या के सामने आ खड़ी हुई। दशहरे की 5-7 दिन की छुट्टियों में शेखर घर गया था और वहाँ से लौट रहा था। मद्रासियों की भीड़ से खचाखच भरे हुए रेल के डिब्बों के 4-5 द्रविड़ भाषाओं के कोलाहल में गूंजते हुए वातावरण में शेखर का मस्तिष्क अपनी रात्रि पाठशाला, अपने शिशु और वयस्क विद्यार्थियों और उनकी पाठ्य पुस्तकों, अब 25 विद्यार्थी थे जिनमें कुछ वयस्क लोग पहले ही साक्षर थे, के प्रश्न में लीन था। छोटी लाइनों की वह गाड़ी इतना सब भार खींचती झिकझिक करती हुई चल रही थी। उनकी गति के लय से शेखर के विचारों का सहारा मिलता था, और वह आसपास छाए कोलाहल से ऊपर उठ सकता था। जब ट्रेन खड़ी होती थी तब वह थोड़ी देर के लिए सोचना स्थगित करके चढ़ने उतरने वाला भीड़ को देख लेता था। एक बड़े स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो शेखर ने देखा कि दरवाजे और खिड़कियों से भीतर घुसती हुई पुरुषों की भीड़ के पीछे एक महिला खड़ी है और बेबस आंखों से भीड़ की ओर देख रही है। उसके दोनों हाथों में 2 बैग हैं, पीछे कूली ट्रंक और बिस्तर लिए खड़ा है। स्त्री कभी साहस करके आगे बढ़ने को होती है, फिर रुक जाती है, कभी दूसरे डिब्बे की ओर भी देख लेती है जिसमें और भी भीड़ है, और समय गाड़ी का हो चला है, गार्ड ने एक सीटी भी दे दी है। शेखर उठा, खिड़की पर खड़ा होकर उसने कहा, लाइए मुझे दीजिए सामान। बैग उसने अंदर खींच लिया, कुल्ली के सामान पकड़कर नीचे रख दिया, और गाड़ी के चलने तक दरवाजे पर पहुंचकर उसे खोल और भीड़ को धक्का देकर बोला, चली आइए। धन्यवाद की बात से घबरा कर शेखर ने अपनी सीट इंगित करते हुए कहा, वहाँ बैठ जाइए। नहीं, आपको इतनी तकलीफ उठाकर मुझे गाड़ी में बिठा दिया, इतना ही पर्याप्त है, अब आपकी जगह लेना नहीं चाहती। मैं बहुत अच्छी तरह से हूँ, कहकर शेखर खिड़की के पास पड़े हुए ट्रंक और बिस्तर पर बैठकर बाहर देखने लगा, ताकि उसे दूसरी तरफ ध्यान किए पाकर महिला अपने आप बैठ जाएगी। उसका अनुमान ठीक निकला, वह बैठ गई। शेखर ने लौटकर उधर देखा, तब वह धन्यवाद देने को हुई, पर शेखर ने फौरन मुंह फिरा लिया, मानो उधर देखा ही नहीं था, और चुप हो गई। थोड़ी देर में एक पुस्तक निकाल ली और पढ़ने लगी। शेखर भी अपनी पाठशाला में पहुंच गया, लेकिन फौरन ही वह चौंका। कुछ दूर पर खड़ा एक अध गोरा, जिसे शेखर ने अपने पास की सीट पर इसलिए बैठने नहीं दिया था कि वह दो तीन आदमियों को धक्का देकर भीतर घुसा था, और वह एक को उसने गाली भी दी थी, अब उस महिला को वहाँ बैठा देखकर बड़बड़ा रहा था। वह शेखर की अपनी सीट छोड़ देने पर अपनी गंदी गोराशाही भाषा में टीका कर रहा था। शेखर ने देखा कि टीका सुनकर उस महिला का चेहरा तमतमा उठा है, लेकिन वह किताब के पीछे छिपकर अनसुनी कर देना चाहती है। शेखर ने भी गोराशाही कोष्ठ में, यद्यपि बहुत हल्के रंग की कोष्ठबंद भाषा की आसरा लेकर उठते उठते कहा, शट अप यू कैड, या आग में ईंधन हुआ। अधगोरा और भी बकने लगा। शेखर ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हें चुप कराना पड़ेगा, अर्थात तो तुम्हें चुप कराना पड़ेगा, और एक जोर का घूंसा जबड़े की बाई ओर मारा। उसने भी शेखर पर वार किया, लेकिन उसे छाती पर लगकर शेखर ने दूसरा घूंसा उसके थोड़ी पर मारा, जिससे उसका मुंह गाड़ी की छत का ध्यान करने लगा, पीठ सीट की पीठ से टकराई और धम से गिर गया। थोड़ी देर उठा नहीं, गाड़ी की चाल धीमी हो गई। स्टेशन पर हो हल्ला सुनकर पुलिस आई, लेकिन स्टेशन पर जो पंजाबी सब इंस्पेक्टर था, वह शेखर को जानता था। उसने कहानी सुनकर कहा, अच्छा किया आपने, दो और लगानी चाहिए थी बदमाश को, और गोरे को डिब्बे से उतारकर ट्रेन को जाने दिया। बात यहाँ समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन समस्या यहीं से आरंभ हुई। शेखर को बैठने की जगह मिल गई थी, उस महिला से इतना परिचय भी हो गया था कि उसने अपना नाम बताया था, और यह भी बताया था कि वह अमुक स्कूल में अध्यापिका है, और शेखर ने कहा था कि वह वहीं पास ही रहता है। इसके बाद दोनों चुप हो गए, और वह अध्यापिका फिर पढ़ने में लग गई थी। शेखर ने चाहा था कि वह फिर अपने विचारों में लीन हो जाए, लेकिन अब वह देख रहा था कि लोग विचित्र सी सहमी हुई दृष्टि से उसकी ओर देखते हैं, कि कई भाषाओं में धीमे स्वर में उसकी आलोचना ही हो रही है। कहीं एक कह रहा है कि यह पंजाबी है, मद्रासी वेश में होने के कारण शेखर का पंजाबीपन तब तक दिखा नहीं था कोष्ठबंद, और इन सब ने सब देखने और आलोचना में किसी को भी यह नहीं पता लगा कि शेखर ने साधन औचित्य निभाया है, जो उस महिला को बिठा दिया है और उस गोरे की बकवास को बंद कर दिया है। कुछ की दृष्टि में वह एक धूर्त है, जो इस छोटी सी बात के सहारे उस महिला से संबंध जोड़ना चाहता है। कुछ के लिए वह एक मूर्ख नौजवान है, जो आजकल की पढ़ी लिखी चरित्रहीन औरतों के चुंगल में फंस कर रहेगा। कुछ के लिए शेखर और वह स्त्री दोनों ही नीच है, और अपने कपटपूर्ण व्यवहार से कोई जघन्य अपराध छिपाना चाहते हैं। यह सब उनकी बातों में नहीं है, लेकिन इनके इशारे आंखों के भी और शब्दों के भी ऐसा ही कह रहे हैं। शेखर के सुनने के लिए नहीं कह रहे हैं, उससे चोरी ही कह रहे हैं, इसलिए शेखर को वह और भी तीखा लग रहा है। शेखर मुड़कर सिर खिड़की से बाहर निकाल लेता है। बादलों से ओझल पहाड़ी हवा उसके तपे हुए कानों के पास से सनसनाती हुई निकलती है, तो वह सोचने लगता है कि क्या बात है। इस तरह वह नैतिक अविश्वास उसने अब तक जाना नहीं। पाप उसने बहुत जगह देखा है, किया भी है, लेकिन पाप ही मानव की हर एक प्रेरणा का मूल है। ऐसा भयानक संदेह, ऐसा संदिग्ध अविश्वास वह अपने हृदय में नहीं जमा सकता है। समझ में नहीं आता कि ऐसा करके कौन कोई जी कैसे सकता है? जिसके हृदय की नाड़ियों में कीड़े कुलबुला रहे हों, वह शांत कैसे रह सकता है? पुरुषों और स्त्रियों का संबंध व्यक्ति के रूप में नहीं, सामूहिक पुरुष और सामूहिक स्त्री के रूप में उनका संबंध इस घातक अविश्वास के रूप में शेखर के सामने पहली बार आया। आज उसने देखा कि संसार के कष्ट के प्रश्न से भी बड़ा यह संसार के अविश्वास का प्रश्न है। यह बड़ी भारी समस्या है जो मानव मात्र ने उस व्यक्ति में केंद्रित कर दी है, जिसे शेखर ने अब तक सिर्फ सहारे के रूप में जाना है, नारी में। और इस विचार से उसका दम ऐसा घुटने लगा कि जैसे उसके नासपुटों में, फेफड़ों में कीड़े घुसे जा रहे हो। शेखर की समिति के सामने उसके उद्देश्य धीरे धीरे कुछ अधिक स्पष्ट होने लगे। नौजवानों में जितना गंभीरता, असंतोष और परिवर्तनशीलता जगाने की जरूरत है, उतना ही स्त्रियों में भी जगाना चाहिए। इस पुरुष प्रधान सभ्यता का अपनी संपूर्णता में संतोष तोड़ देना होगा, उसका यह औचित्य का दावा झूठ कर दिखाना होगा, तभी हमें आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा। यह नारी मात्र में अविश्वास नारीत्व को ही परमात्मा या पापात्मा मानने का संगीत षड्यंत्र नष्ट करना होगा। पौरुष के मत में पागल हमारे दार्शनिक और समीक्षक कहते हैं, स्त्री को पापमयी, दुर्भिप्रेरणा समझना रोमांटिक युग की देन है। जब पुरानी रूढ़ियों में हमारा विश्वास टूटने लगा है, पुराना धर्म, पुराना ज्ञान, पुरानी देवी विधान हमें अपने नए विधान के कारण अपर्याप्त और झूठा लगने लगता है, जब हमें पहले पहल मालूम होता है कि इस अब तक सुव्यवस्थित जान पड़ने वाले विश्व में कुछ अव्यवस्थित बैठक भी हैं, तब हम उसे पाप कहते हैं। लेकिन जब वह हमें मधुर भी लगता है, आकर्षित भी करता है, तब हमें रोमांटिक बनकर आकर्षण का औचित्य छिपाते हैं। हम कहते हैं कि सौंदर्य में आकर्षण है, वह हमें बांध लेता है, उसमें पड़कर हम नियति के गुलाम हो जाते हैं, वह हमें गड्ढे में धकेल देता है। और सौंदर्य का सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान प्रतीक नारी नहीं तो क्या है? इसलिए नारी मूल पाप भावना है, महामाया है, पतन है, और इस प्रकार हम अपने में संतुष्ट रहते हैं और संगठित अविश्वास की दीवार खड़ी करते हैं। वह दीवार हमें तोड़नी होगी। शेखर बोलता है, सदाशिव कभी कभी दाद देता है, नहीं तो चुप रहता है। उसकी चुप में शेखर अपना सहयोगी पहचान लेता है। देवदास हंस देता है, पर जो काम सीपुर्द होता है, लगन से करता है, केवल राघवन का उत्साह कुछ घट रहा है। समिति के उद्देश्य ज्यों ज्यों साफ होते जाते हैं, उसके मेंबर भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई सुस्पष्ट सिद्धांत चाहिए जिसके अनिज्ञान में वे अपनी अपनी डोंगियां बांध दे और समाज के समुद्र के पार घिसटते चले। लेकिन उससे काम कुछ अधिक अच्छा होने लगा है, ऐसा नहीं जान पड़ता, बल्कि विरोधियों को अब विरोध के लिए कोई बात मिलना अधिक आसान हो गया है। फिर भी ये अनेक तरह के जाल जंजाल काटता हुआ और काला धुआं उगलता हुआ अग्नियान चला ही जा रहा है, और उसका कप्तान शेखर सदाशिव जैसा सहकारी पाकर अपने को धन्य मानता है। शेखर और उसके साथियों का एक दिन एकाएक ही नामकरण हो गया, एंटीगोनम क्लब। बात यूं हुई, समिति बहस मुबाहसे के बाद धीरे धीरे इस नतीजे पर पहुंच रही थी कि उनका युवक समाज स्त्रियों के प्रति वही भाव रखे जो एक आदरणीय अतिथि के प्रति रखा जाता है। वे रहे कुछ अपरिचित ही, लेकिन सम्मान पाए, कष्ट में सहायता पाए, विपत्ति में संरक्षण पाए, और इतना सब होते हुए भी स्वाधीन रहे, किसी तरह उनके प्रति बाधित ना हो। अपनी ओर से शेखर ने यह भी तय कर लिया कि वह विवाह नहीं करेगा। उसकी बाद में भी बात भी नहीं सोचेगा। यह निश्चय पर पहुंचने के बाद ही उसने हॉस्टल की ओर लगी हुई बेल के नीचे एक छोटी सी मीटिंग सी की थी और उसमें अपने विचार प्रकट किए थे। जब वह अविवाहित और स्त्रियों के प्रति दूरस्थ भाव का यत्न करने की बात आई, तब तक श्रोता उब गए थे और एक एक दो दो करके चले गए थे। रह गए थे केवल तीन मित्र। शेखर फिर भी कहे जा रहा था, आप देखिए, हमारे साहित्य में, कहानी में, उपन्यास में, नाटक में, मंच में और पट पर सब जगह आप ही पाएंगे, लेखक नैतिकता का प्रपंच खड़ा करता है। नरक की यातनाएं भोगती हुई लड़कियां लंबी लंबी सुनने में खूब बढ़िया स्पीचें देकर बताती है कि वे पतिव्रत के लिए मर रही है, क्योंकि पतिव्रत ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा धर्म है, जिसके लिए सैकड़ों मर गई, सैकड़ों सती हो गई या जौहर करके भस्म हो गई, सैकड़ों हाथियों के पैरों तले रौंदी गई, पुरुष दर्शकों के लिए पुरुषों द्वारा तैयार की गई मरीचिका, अपनी बढ़ाई और अपनी महत्ता के दर्प में मदमत बेवकूफ पुरुष सांड देखता है, सुनता है, पढ़ता है और झूम उठता है। क्यों? क्योंकि कहानी या नाटक की नायिका का या पतिव्रत क्या है? या क्या एक गुलामी है? चाहे संघर्ष, स्वयं स्वीकार की हुई गुलामी, जिसके द्वारा वह अपने को पति के यानी दर्शक के, पुरुष जाति के और इस प्रकार के अनंत दर्शक के अधीन करती है, क्योंकि वह अपने पुरुषत्व के कारण दर्शक ही प्रतिनिधि रूप में वह पति है और नायिका के दारुण यातनाओं का वह विभत्स दिग्दर्शन सब उसी के लिए है, उसके व्यक्तिगत अहंकार की पुष्टि करता है। यही पतन है, यही सबसे बड़ा पाप है, या एक मौलिक अपराध को बनाए रखने और अमर करने के लिए एक विराट षड्यंत्र पुरुष के अधिकार को बनाए रखने के लिए। सदाशिव ने बीच में ही, लेकिन बिना विरोध के कहा, पर स्त्री इसे स्वीकार तो कर लेती है, हम ठोकरे मारकर स्वीकृति लेते हैं, तभी स्त्रियों के बनाए हुए साहित्य में वह शक्ति नहीं आती। वह लिखती है तो पुरुष के आदर्श में अपने को बांध कर, तभी उनका लिखा हुआ झूठ और बेजान होता है, सुंदर चाहे हो कागज के बने हुए फूल की तरह। लेकिन कहकर सदाशिव मानो कुछ सोचने लग गया। देवदास ने कहा, भाई तुम्हारी बात तो जीना मुश्किल कर देगी, हर वक्त हर बात में हम आदर्श खोजने बैठेंगे तो काम कैसे चलेगा, और कहीं कभी कोई स्त्री तुमसे कुछ बात पूछ बैठेगी तो तुम जवाब भी नहीं दे पाओगे, यही सोचते रहोगे कि कहीं जवाब में पुरुष का दर्प तो नहीं आ गया। मैं कहता हूँ तुम 5 मिनट में उल्लू बन जाओगे, राह चलना मुश्किल हो जाएगा। शेखर बेल को हाथ से पकड़े बैठा था। देवदास की बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराया और गंभीर होकर बोला, तो उल्लू बनने से डरना क्यों? कुछ करना है तो उल्लू बनना ही होगा। हमें चाहिए कि उसी में अभिमान कर सके, अपना अपमान वैसे ही धारण करे जैसे या बेल इन अरक्त फूलों को, कहकर उसने फूलों का एक गुच्छा तोड़कर चुप बैठे राघवन का बटन में खोज दिया। मजाक में ही औरों ने भी फूल तोड़े और बटन में लगा दिए। हंसी में सभा भंग हो गई। जब चारों जन हॉस्टल में जाने लगे, तब किसी ने एंटीगोनम लता के वे फूल देखकर कहा, यह एंटीगोनम क्लब चला आ रहा है, और क्षण भर से नाम प्रसिद्ध हो गया, स्वीकार भी हो गया और स्वीकृति से उसमें जो उपहास का डंक था वह टूट गया। लेकिन उपहास ही शांत हो जाए ऐसा नहीं हुआ। क्लब की सदस्य संख्या बढ़ने लगी। शेखर को शक होने लगा कि इस वृद्धि के कारण क्लब के आदर्श नहीं बल्कि क्लब का संकेत वह एंटीगोनम का फूल है। उसने कई बार देखा था, आप राष्ट्र के नाम पर लोगों को बुलाइए कोई नहीं आएगा, लेकिन राष्ट्रीय डंडा लेकर चलिए तो बहुत लोग नीचे आ खड़े होंगे और अपने कोट के कॉलर में तिरंगा बिल्ला भी लगा लेंगे। फिर भी शेखर के पास कोई उपाय नहीं था कि वह पहचान कर सके। अग्नि परीक्षा के सिवाय कोई परीक्षा नहीं है, और सिर्फ परीक्षा के लिए अग्नि भड़काना उसकी दृष्टि में इतना बड़ा पाप है कि अब वह राम का भी आदर करने में अपने को असमर्थ पाता है। बहुत सोचकर शेखर ने एक हस्तलिखित पत्र निकालने का निश्चय किया जो क्लब के आदर्शों का प्रचार करे। मेंबरों से उसने लेख मांगे और स्वयं भी लिखने लगा। सदाशिव को चित्रण का काम सुपुर्द हुआ। टाइटल के लिए आरक्त एंटीगोनम का एक गुच्छ भीतर जो उसकी इच्छा हो। अंग करीब करीब तैयार हो गया था और बड़ी आतुरता से उसकी प्रतीक्षा हो रही थी। यहाँ तक कि हॉस्टल के कई छात्र इस ताक में थे कि शेखर के कमरे से लिपि उड़ा ली जाए, क्योंकि प्रकाशन के बाद बहुत दिनों तक तो मेंबरों में ही चक्कर काटेगा, उसके बाद कहीं कहीं उन्हें देखने को मिलेगा। पत्र में इतनी दिलचस्पी है, इसमें इससे शेखर बहुत प्रसन्न था, लेकिन उसी प्रसन्नता के कारण उसके कार्य में एक विघ्न भी हो रहा था। संपादक के लेख तैयार नहीं हुआ था, और जितनी ही प्रतीक्षा बढ़ती थी उतना ही शेखर का विकल्प, क्योंकि वह चाहता था संपादक के लेख पढ़कर तहलका मच जाए, क्लब के विरोधियों के मुंह टूट जाए, उपहास में गले घूंट जाए। तब तक एक दिन घटना घटी। राघवन ने कॉलेज से लौटकर बिस्तर बांधना शुरू किया। पूछने पर मालूम हुआ कि उसने 10 दिन की छुट्टी ली है और घर जा रहा है। क्या बात है, कुशल तो है, एकदम ऐसे जा रहे हो? सब ठीक है, काम से जा रहा हूँ। अरे भाई बताओ तो क्या काम? बहुत पूछने पर राघवन ने रुकते रुकते कहा, भाई मेरी शादी हो रही है। शेखर ने अचकचा कर कहा, ऐं? थोड़ी देर बाद कुछ स्वस्थ होकर उसने प्रश्न पूछना आरंभ किया, कब, किससे, कैसे तय हुई, क्यों इत्यादि। राघवन पहले तो चुप रहा, फिर उसने बताना आरंभ किया कि पिता ने 5-6 वर्ष पहले सगाई कर दी थी। लड़की बड़े मालदार घर की है, राघवन ने उसे देखा नहीं है, ना वह शादी ही चाहता है, पर पिता जोर दे रहे हैं, तारीख भी तय कर दी है, इसलिए वह जा रहा है। तुम्हारी आयु कितनी है? आयु तो काफ़ी है, 20 वर्ष, लेकिन मैं अभी। शेखर अब क्रोध नहीं संभाल सका। आयु काफ़ी है, या कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? 20 वर्ष के हो गए और तुम्हें अभी तक इतना दम नहीं है कि जबरदस्ती शादी होने से रोक दो। नहीं करना चाहते शादी तो क्यों नहीं कहते कि नहीं करोगे? नहीं, मैं नहीं सुनता बात। एक बार कह दिया तो क्या बहादुरी की? तुम कोई भेड़ बकरी हो कि गले में रस्सी डालकर खींच ले जाओगे और बलि दे देंगे? तुम आदमी हो, आदमी, और तुम कहते थे नौजवानों को दृढ़ बनाओगे। तुम साथी बने थे हमारे इस काम में कि स्त्रियों के समर्थ बनाएंगे। तुम्हारी स्त्री उस आदमी का क्या आदर कर सकेगी जो उसकी चोटी में गूंथे जाने से इनकार नहीं कर सका? क्योंकि मैं इसे शादी नहीं कहूँगा। शादी तब होती जब तुम स्वयं अपनी इच्छा से उधर बढ़ते, स्वयं अपनी संगनी चुनते और फिर सारी दुनिया से लड़कर उसे ग्रहण करते। तुम राघवन को यह फटकार अच्छी नहीं लगी। झुंझलाए हुए स्वर में बोला, कहना आसान है, माँ बाप की इच्छा के खिलाफ मैं कैसे जाऊँ? उन्होंने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया, क्या उनके प्रति मेरा कोई ऋण नहीं है? मैं इस बुढ़ापे में उन्हें चोट नहीं पहुँचा सकता। तुम इसे कायरता समझो, मैं नहीं समझता। तुम सा हृदयहीन मैं ना हूँ, ना होना चाहता हूँ। ऋण? लेकिन 20 वर्ष तक मेहनत करके उन्होंने तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम अपने पैरों में खड़े हो सको, स्वाधीन हो सको। क्या उसके प्रति तुम्हारा ऋण नहीं है? मानवता के प्रति तुम्हारा ऋण नहीं है? कल्पना करो कि 20 वर्ष बाद माता पिता या पाए कि हमने अब तक एक नर नहीं एक भेड़ की सेवा की है। कल्पना करो 20 साल के विवाहित जीवन के बाद स्त्री यह जाने कि मेरा और इस आदमी के साथ केवल इसलिए हुआ कि इसके पिता ने एक भेड़ मेरे पल्ले बांध दी। मैं ऐसा अभागा पिता या स्त्री हूँ तो आत्महत्या कर लूँ। राघवन, तुम भाई मुझे कुछ मत कहो, मुझसे या नहीं हो सकता, मैं उनका विरोध नहीं कर सकता। जब तुम्हें ऐसी मजबूरी का सामना करना पड़ेगा तब जानोगे। मजबूरी? हाँ मजबूरी। तब माता पिता को क्यों बदनाम करते हो? मजबूरी उनकी ओर से नहीं है, तुम्हारी ओर से है। इस सूट के भीतर दुबकी हुई मिमाइती भेड़ की लाचारी है। शेखर पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। अपने कमरे में जाकर उसने कलम का पत्र उठाया, उसने क्लब का पत्र उठाया और संपादक के लिए खाली पेज खोलकर सामने रखा। कलम उठाई और लिखने लगा। तब तक सब लेख लिखकर संशोधन करने के बाद सुंदर अक्षरों में नकल किए जा रहे थे। लेकिन इस समय शेखर के भीतर मानो एक भट्टी धधक रही थी, जिससे उसके विचार शीशे की तरह उभर रहे थे और ठीक ढलढलाए बाहर आ रहे थे। उनमें जरा भी संशोधन संवर्धन करने की जरूरत नहीं थी, गुंजाइश नहीं थी। साहित्य में, समाज में, कला में, जीवन में, सब जगह वही मनमोहक आरंभ, वही मनमोहक प्रवाह और अंत में वही गढ़ी गहरी खड्ड। प्राणों की पक्षी उड़ना भरता है, लेकिन है कि वह आकाश की छत को छू लेगा, लेकिन एकाएक वह टूटकर गिर जाता है, मानो बिजली की मार से नष्ट हो गया हो। हम लोग खूब बढ़िया इमारत बनाते हैं, एक एक पत्थर जोड़कर मंदिर सजाते हैं, लेकिन अंत में जब पलस्तर होने लगता है तब सारा घटा खोप पैरों की धूल हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। या क्यों? या इसलिए कि हमारे आदर्श डर की भीत पर कायम है, हमारे विशाल भवनों की नींव खोखली है। और जैसे कि शास्त्र भी कहते हैं, हमारे देवताओं के पैर भूमि पर नहीं टिकते हैं। समाज की सड़ती हड्डियों के भड़कीले लाल रेशम में लपेट कर हम कहते हैं, देखो हमारा युवक समुदाय। शेखर ने अभी लिखना समाप्त नहीं किया था कि अंधेरा हो गया। वह बत्ती जलाने के लिए उठा कि उसे मालूम हुआ उसके माथे और नाक पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदे हैं। वह जरा हवा लेने के लिए बाहर उठकर बरामदे में टहलने लगा। और भी कुछ एक लड़के घर जा रहे थे। मालूम हुआ कि उन दिनों शादी के लिए साइत अच्छी है, उसके बाद कई महीने तक ब्याह नहीं हो सकेंगे। या भी मालूम हुआ कि किसी लड़के ने अपनी भविष्यवत पत्नी को देखा नहीं है और ना किसी की इतनी जल्दी ब्याह कर लेने की इच्छा है। शेखर एक लंबी सांस लेकर लौट आया और फिर लिखने लगा। प्रत्येक भारतीय नौजवान अपनी शादी कर पछताता है और प्रत्येक उसके लिए माँ बाप को दोषी ठहराता है। मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन माँ बाप ने जोर दिया, परिस्थिति ऐसी हो गई इत्यादि। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक भारतीय नौजवान अपने माँ बाप का गुलाम है और चाहते हैं शासक की गुलामी से निकलना, समाज की गुलामी से निकलना, अज्ञान की और प्रकृति की गुलामी से निकलना। स्वयं परमात्मा की गुलामी से निकलने की बात करते हैं वे जो जीवन की अंधकूप में खचाखच भरे हुए हैं और जो अपनी ऊपर कुटुंबनी रूपी ढक्कन देकर उस अंधकूप की ओर भी अंधेरा और प्राणघातक बना रहे हैं। कलम में स्याही चूक गई, लेकिन संपादक के भी समाप्त हो गया था। उसकी आखिरी पंक्तियों को सूखती हुई कलम से ही किसी प्रकार घसीट कर शेखर ने कलम रख दी। तब तक एक क्षण के लिए एकाएक लगा कि वह अकेला है और एक सखा चाहता है। उसने मेज पर अपने खुले हुए संपादक के लेख पर सिर टेक दिया और एक लंबी बड़ी सांस ली। फिर वह उठा, कोट की जेब से कुछ पैसे निकालकर जेब में डाले और हॉस्टल की सीढ़ियाँ उतर आया। नीचे कॉमन रूम के बाहर दो तीन लड़कों के बीच सदाशिव खड़ा था। उसने शेखर से कहा, एंटीगोनम प्रकाशित हो गया है, मेरी मेज पर रखा है, ले लो। और इस समाचार से जागे हुए कौतूहल को ना देखता हुआ बाहर निकल गया। एंटीगोनम की उस बहुप्रदा बेल से उसने फूलों का एक गुच्छा तोड़ा और फिर समुद्र की ओर चल दिया।